हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब उस डायन को यकीन हो गया था कि वो नहीं बचने वाली। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलने लगा था और उसकी आत्मा एकदम गायब होकर उस पेड़ के तने में समा गई थी। जैसे ही अमित ने ये देखा, उसने राहत की सांस ली और मालिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे इस प्लान को पूरी तरह से सफल करवाया और तुमने मेरा साथ दिया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं इस डायन से कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। तभी मल्लिका ने हैरानी से अमित से पूछना शुरू किया, मालिक, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। जब आपने मुझे प्लान के बारे में बताया तो मैं उस वक्त नहीं पूछ पाई थी, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता चला कि इस डायन का अंत यहीं इस पेड़ के पास हो सकता है। जैसे ही मल्लिका ने ये कहा, अमित मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा और बोला, अगर तुम इस बात की तह तक जाना चाहती हो, ये सब मैंने कब और कैसे किया। अगर तुम्हें इसके बारे में वाकई जानना है तो इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ऐसा कहकर वो मल्लिका को लेकर जाने लगा, लेकिन तभी मल्लिका ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं, मैं तब तक आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि आपको उस डायन के अंत के बारे में कैसे पता चला। तब तक मुझे चैन के ही मिलेगा। जैसे ही मल्लिका ने इस तरह जिद की, काली शक्तियों का मालिक अमित उसे घूर कर देखने लगा। मल्लिका को लगा कि उसने जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही बड़ी बात कह दी है। उसे इस तरह अमित से जिद करने का, कोई बात पूछने का हक नहीं है। तभी मल्लिका ने जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए कहा, आपको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है काली शक्तियों के मालिक, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भावावेश में ये सब आपसे पूछ बैठी। तभी अचानक अमित आगे बढ़कर मल्लिका के होठों को चूम लिया और बोला, आज तुम जो कुछ चाहो वो हमसे पूछ सकती हो। तुम नहीं जानती, उस डायन से अपना पीछा छुड़ाने के बाद आज मैं अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कितनी शक्तियाँ आ गई हैं। अब मैं अपना ध्यान सिर्फ अमन पर लगा सकता हूँ। इतना ही नहीं, काली शक्तियों का महारक्षक बनने में लग सकता हूँ। और हाँ, तुम ये बात जानना चाहती हो ना कि उस डायन का अंत कैसे हुआ, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, काली शक्तियों के महागुरु ने मुझे इस बात के बारे में पहले ही बता दिया था कि अगर तुम्हें उस डायन से अपना पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें उसे उसी जगह पर ले जाकर मारना होगा जहां से वो आई है। इसीलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया था ताकि उस डायन से पीछा छुड़ाने के बाद अपना पूरा ध्यान सिर्फ अमन पर लगा सकूं और तिलस्मी पत्थर हासिल करके उसके जिन्नातों के वंशज का अंत कर सकूं, क्योंकि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। जल्दी ही अमित मल्लिका को लेकर एक विजयी मुस्कान के साथ अपने महल की ओर रवाना हो गया और मल्लिका भी बूझे मन से अमित के साथ जाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अमित जल्द से जल्द अमन को झुका लेगा। अब अमन को अपने महल में अपने पहरेदारों को इकट्ठा करना था, जिन पहरेदारों को डायन खा चुकी थी। जल्दी ही अमित ने एक गहरा तप करके कई सारे पहरेदारों को अपने महल में जमा कर दिया था और जल्दी ही उसने अमन से मिलने का प्लान बना लिया था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे सबसे पहले अमन से मिलकर माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि उस दिन होटल में जब तारा ने उसे चकमा दे दिया था और किसी और लड़की को वहां अपनी जगह भेज दिया था, उस वक्त अमन ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया था और ना जाने उसके मन में क्या क्या सोच लिया होगा। सबसे पहले अमित को अमन की गलतफहमी दूर करनी थी और एक बार फिर उसे अपनी दोस्ती आगे बढ़ानी थी, क्योंकि अमित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अमन के करीब रहना है तो उसका दोस्त बनकर ही रहना होगा। अगर उसने सीधे तौर पर उसके दुश्मन बनकर अमन के साथ रहा तो अमन उसकी जान लेने में एक पल नहीं लगाएगा और अभी वो इतनी आसानी से अपना बदला लिए बगैर नहीं मर सकता। अमित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो अमन के बाप की नाजायज औलाद है। काली शक्ति के गुरु ने इसीलिए उसे इस काम के लिए चुना था और साथ ही साथ उसके मन में बचपन से ही अमन और सफेद जिन्नातों के लिए इतनी नफरत भर दी थी कि वो हमेशा काली शक्तियों का वफादार बना रहे। वहीं अमित को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि मल्लिका उसका एक अंश उसकी अपनी माँ को जंगल में पालने के लिए देकर आई थी और उसके बदले में उसने मल्लिका के साथ सौदा किया था कि उसे जिन महाराज का वंशज चाहिए जिसका खून पीने के बाद वो हमेशा के लिए जवान होना चाहती थी। अमित की माँ ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसके जवान होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तारा के बच्चे यानी जिन्नातों के वंशज का खून पीकर जवान होना, क्योंकि उसे एक बड़ा श्राप लगा था। उसने एक सफ़ेद जिन्नात अमरेंद्र के साथ नाजायज रिश्ता बनाया था। वो अमन के पिता की सुंदरता उनके गठीले शरीर पर मोहित हो चुकी थी, इसीलिए उसने अपने जाल में फंसाकर उनके साथ रिश्ता बना लिया था, जिसका नतीजा कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों का मालिक अमित ही था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अमित ये सारी बातें अच्छी तरह से जानता था। तो अमित का अमन से बदला लेने का मकसद पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल भी था। क्योंकि वो तिलस्मी पत्थर हासिल करके काली शक्तियों पर विजय हासिल करना चाहता था और सफेद जिन्नातों के साथ साथ काली जिन्नातों पर भी हुकूमत करना चाहता था। और उसी के साथ साथ वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, अमरिंद्र सिंह यानी अमन के पिता की जान लेकर। वहीं दूसरी ओर तारा, करिश्मा और अमरिंद्र अलग अलग दिशाओं में अमन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाकर अमन को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अमन कहीं नहीं मिल रहा था। तारा को इस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि अगर अमन ने किसी नॉर्मल इंसान को अपना शिकार बना लिया तो पूरी इंसानियत खतरे में जा सकती थी, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान किसी और को काटता तो वो भी पिशाच बन जाता और अगर उसके द्वारा काटा गया इंसान किसी को काटता तो वो भी पिशाच बन जाता। इस तरह से पूरी इंसानियत खतरे में थी, तो तारा को ये सब कुछ रोकना था। और इसके पीछे एक और कारण ये भी था कि अगर इस तरह से पिशाच बनते चले गए तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पिशाच के साथ साथ जिन्नात भी रहते हैं, जिससे जिन्नातों का सच सबके सामने आ जाएगा और जिन्नातों की जान खतरे में आ जाएगी। तो तारा ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी, वो जल्द से जल्द अमन को ढूंढ लेना चाहती थी। लेकिन अमन के अंदर वो पिशाच ज्यादा ही आगे निकल चुका था। वो अमन के दिमाग में जितने भी एड्रेस थे वो अमन को उन एड्रेस पर ले जाने लगा था। सबसे पहले वो सीधे उसके ऑफिस पहुंच चुका था। तारा को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था। अमन का ऑफिस हमेशा की तरह चल रहा था। राधिका के पिता ने सारा ऑफिस बड़े अच्छे तरीके से संभाल रखा था और ऑफिस के सभी काम किए जा रहे थे। मल्लिका और अमित तो ऑफिस आ ही नहीं रहे थे। वे उस वक्त ये प्लान बनाने में बिजी थे कि आखिरकार वे किस तरह से अमन से बात करेंगे, किस तरह से सब कुछ क्लियर करेंगे। अमित को सबसे पहले अमन से मिलकर उससे माफी मांगनी थी। जैसे ही इतने दिनों के बाद अमन ऑफिस में गया, जितने भी ऑफिस वाले थे वे उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि आज अमन ने कोई प्रोफेशनल कपड़े नहीं पहने थे। वो नॉर्मल घर के कपड़ों में वहां पहुंच चुका था, क्योंकि तारा ने अमन को जादुई कपड़े पहनाए थे जो उसे ठीक लगे थे। उसने वो कपड़े उस वक्त उसे पहना दिए थे, जिसमें उसने हल्का सा लोअर और शर्ट पहना दिया था, जिससे अमन का जिस्म छुप गया था। लेकिन अमन हमेशा ऑफिस में प्रोफेशनल तरीके से जाता था, ब्रांडेड कोट टाई वगैरह पहनकर, चमकदार जूतों के साथ।
लेकिन आज वो नॉर्मल घर की स्लीपर में ऑफिस में पहुंच चुका था। हर कोई अमन को हैरानी से देखने लगा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अमन के साथ क्या हुआ है, क्यों अमन इस तरह से आज ऑफिस में आया है। सभी एक दूसरे का मुंह देखकर मन ही मन में अमन के खिलाफ बातें करने लगे थे। वहीं अमन सीधे अपने केबिन में जाकर बैठ गया था। उस वक्त अमन के जिस्म के अंदर दो दिमाग काम कर रहे थे, पिशाच का दिमाग और अमन का दिमाग। अमन पिशाच से अंदर अंदर लड़ रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे पूरा का पूरा पिशाच बनता जा रहा था। और उस वक्त अमन के अंदर का पिशाच खून पीने के लिए मांग रहा था। और यहाँ तो अमन के ऑफिस में हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज मौजूद थे। हालांकि अमन के ऑफिस वाले फ्लोर पर केवल गिने चुने लोग ही काम करते थे, लेकिन अमन के पहले फ्लोर पर अनलिमिटेड वर्कर काम करते थे। वहीं राधिका के पिता अमन को इस हालत में देखकर वहां आना काफी अजीब लगा और उन्होंने बिना सोचे समझे सबसे पहले तारा को कॉल कर दिया था, क्योंकि तारा ने उन पर काफी एहसान किए थे। तारा ने उनका शरीर ठीक कर दिया था, उनके अंदर जवानों जैसी हिम्मत और ताकत दोनों थी। जैसे ही तारा को इस वक्त ऑफिस से फोन आया, उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि इस वक्त वो जल्द से जल्द अमन को ढूंढना चाहती थी। लेकिन इस वक्त राधिका के पिता का फोन आ रहा है, उसे काफी अजीब लगा। जल्दी से बिना सोचे समझे उसने फोन उठा लिया। जैसे ही तारा ने फोन उठाया, राधिका के पिता ने कहना शुरू कर दिया, माफ कीजिएगा बेटी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी थी कि मुझे फोन करना पड़ा। अमन सर आज पूरे 12 दिनों के बाद ऑफिस में आए हैं, लेकिन वो आज कुछ ठीक से नहीं लग रहे हैं, कुछ उनकी हालत अजीब सी लग रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2-3 पहले फ्लोर वाले लोगों को अपने केबिन में बुलाया है, लेकिन अभी तक उस केबिन से कोई भी बाहर नहीं निकला है, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। जैसे ही राधिका के पिता ने यह सब कहा, अब तारा का दिमाग एकदम से सुन हो गया था और वो जल्दी ही समझ गई थी कि अमन क्या कर रहा होगा और उस वक्त 2-3 इंसान जो अमन के साथ उस केबिन में मौजूद थे उनके साथ अमन क्या कर रहा होगा। जल्दी ही तारा ने करिश्मा और अमरिंद्र जी को इस बात के बारे में बता दिया और खुद ऑफिस की ओर रवाना हो गई। तारा ने ऑफिस जाने के लिए किसी बस या रिक्शा का सहारा नहीं लिया था, उसने सीधे अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके वो सीधे ऑफिस में पहुंच गई थी। और जैसे ही तारा ऑफिस में गई, राधिका के पिता ये देखकर हैरान हो गए कि तारा को उन्होंने केवल 5 मिनट पहले ही फोन किया है और तारा इतनी जल्दी ऑफिस भी आ गई। तभी तारा ने उनके मन की कश्मकश को समझ लिया था और वो कहने लगी, वो एक्चुअली मैं भी ऑफिस ही आ रही थी और जैसे ही आपने फोन किया मैं थोड़ा तेज चलकर ऑफिस आ गई। तभी राधिका के पिता हल्का सा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा आपको इतने दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लगा। तब तारा ने उनसे कहा, क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त अमन सर कहाँ पर है। तभी उन्होंने अमन के केबिन की ओर इशारा कर दिया और कहा, अमन सर जब से यहाँ आए हैं वो लगातार नीचे वाले फ्लोर पर जितने भी वर्कर काम करते हैं उनमें से एक एक को बुला रहे हैं और अभी जो उनके केबिन में गया है 7वां वर्कर गया है, लेकिन अभी तक कमरे से कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, तो ये बात हमें थोड़ी सी अजीब लग रही थी इसलिए मैंने आपको फोन किया। जैसे ही तारा ने ये सुना उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था और वो जल्दी से अमन के केबिन की ओर जाने लगी थी। और